दिन भर 22 जुलाई दिन सोमवार, मैं हूं वात्सल्य राय। चांद की ओर रवाना हुआ भारत का चंद्रयान 2 कामयाब लॉन्च पर बधाइयों का तांता। इसरो प्रमुख बोले,
इट इज द बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स मून। इट इज माय ड्यूटी टू सैल्यूट ऑल द पीपल हु हैव डन द वर्क।
कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत पर बहस जारी, कुमार स्वामी सरकार के भविष्य पर सस्पेंस। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की आज मुलाकात, क्या होगी बात?
पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस तालिबान के ऊपर है और इन एलिमेंट्स के ऊपर है, वो यूएस को भी पता है कि बाकी मुल्कों से काफी ज्यादा है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया। एक बार पहले प्रक्षेपण की कोशिश असफल रही थी। जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लेकर गया। चंद्रयान 2 में 3 चरण हैं। इसका पहला ऑर्बिटर है जो चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाएगा। दूसरे हिस्से में लैंडर के जरिए वो चंद्रमा पर उतरेगा और तीसरे चरण में रोवर के जरिए वो चंद्रमा की सतह पर जानकारियां इकट्ठा करेगा। मुंबई के बांद्रा में आज दोपहर MTNL की एक 9 मंजिला इमारत में आग लग गई। जब आग लगी तब इमारत में 100 लोग फंसे हुए थे। अब तक 60 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हांगकांग पुलिस ने आज़ादी के समर्थक कार्यकर्ताओं पर अज्ञात लोगों के हमले के बाद अपना बचाव किया है। रविवार को रैली के बाद घर लौट रहे लोगों पर सफ़ेद टी शर्ट पहने और लाठी लिए लोगों ने हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। हांगकांग पुलिस प्रमुख स्टीफन लो ने कहा है कि प्रशासन ने इस मामले में देर से प्रतिक्रिया इसलिए दी क्योंकि कई अफसर दूसरे जिलों में तैनात थे। वहीं चीन के लाइसन दफ्तर पर हमले की हांगकांग की शीर्ष नेता कैरी लाम ने निंदा की है। प्रदर्शनकारियों पर हमले की निंदा करते हुए एक आयोजनकर्ता नेथन लो ने कहा, ये बेहद क्रूर है। जो हमारे खिलाफ हैं वो केवल प्रदर्शनकारियों पर ही नहीं बल्कि आम नागरिकों पर भी हमला कर रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे हमला किया और वो इसे स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। ये हमले नेताओं, पत्रकारों और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं पर हुए हैं। इस पर पुलिस ने आंखें मूंद रखी और उन्होंने बीती रात को किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ये थे विरोध प्रदर्शन के एक आयोजनकर्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान ने कहा है कि उसने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करने वाले 17 जासूसों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ को मौत की सजा दी गई है। खुफिया मंत्रालय ने कहा है कि संदिग्ध जासूस सेना और परमाणु कार्यक्रमों समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। एक अमरीकी टीवी चैनल से बातचीत में अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान के दावों को खारिज किया है और कहा है कि ईरान का झूठ बोलने का इतिहास रहा है। इसराइल के इलाकों के नज़दीक बसे एक फलस्तीनी गांव को तबाह करने पर फलस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद उश्तैया ने इसराइली सुरक्षा बलों की निंदा की है। सुरबहर में बुलडोजर और सैकड़ों इसराइली पुलिस और सैनिक आए और उन्होंने घरों को उजाड़ दिया। ये गांव इसराइल के कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम के किनारे पर बसा है। प्रधानमंत्री उश्तैया ने इसराइली कार्रवाई को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। मंत्रिमंडल इस गंभीर आक्रामकता की निंदा करता है। यरूशलम के लोगों को अपने घरों और अपनी जमीन से जबरन हटाने की ये लगातार हो रही कार्रवाइयों में से एक है। ये एक युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है। ये थे मोहम्मद उश्तैया के शब्द। यूक्रेन में वामपंथ के समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ऐसे पहले नेता बनने जा रहे हैं जिनकी पार्टी का संसद में पूर्ण बहुमत होगा। अपने प्रसिद्ध टीवी शो सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम पर रखी गई उनकी पार्टी रविवार को हुए चुनाव में 424 में से तकरीबन 250 सीटें जीतने की ओर है। जेलेंस्की ने अप्रैल में राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्हें संसद में भी समर्थन चाहिए था। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव।
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
कल से जारी उल्टी गिनती दोपहर 2:43 पर खत्म हुई और चंद्रयान 2 रवाना हो गया। ये यान भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है। लॉन्च कामयाब रहा है और अगर ये पूरा मिशन भी सफल हुआ तो चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला यान होगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में हजारों लोग चंद्रयान 2 के लॉन्च के गवाह बने। वहीं तमाम लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया के जरिए सीधी तस्वीरें देखी। पहले चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 15 जुलाई को होना था लेकिन आखिरी मौके पर इसे टाल दिया गया। कामयाब लॉन्च के बाद इसरो प्रमुख के सिवन ने मिशन से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।
इट इज द बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स मून।
इसरो के चेयरमैन कह रहे थे कि यह चांद की ओर भारत की ऐतिहासिक यात्रा और दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरने और वैज्ञानिक परीक्षण करने की शुरुआत है। गंभीर तकनीकी खामी आने के बाद हमने उसे दुरुस्त किया। इसरो ने जोरदार तरीके से वापसी की है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उन सभी लोगों को सलाम करूं जिन्होंने ये काम किया है और इसे कामयाब बनाया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लॉन्च के बाद वैज्ञानिकों को बधाई दी है। लोकसभा और राज्यसभा में भी वैज्ञानिकों को बधाई दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुनिए।
ये सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सभी वैज्ञानिकों को उनके दिन रात के अथक प्रयासों के लिए उनको बधाई देती है।
चंद्रयान का बजट करीब 1500 लाख डॉलर है और इस अभियान की अगुवाई के लिए इसरो ने 2 महिलाओं एम वनिता और ऋतु करधल को चुना। चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग बताया जा रहा है। ये कितनी बड़ी छलांग है, मैंने ये सवाल किया विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से।
अभी तो चंद्रयान 2 का सफर शुरू हुआ है, अभी इसमें पड़ाव बाकी हैं और ये पहला सफर अच्छे से पूरा हुआ है चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में धरती की कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया गया है। अभी इसको चांद की तरफ भेजा जाएगा और फिर इसमें से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पे भेजा जाएगा। वो बड़े कठिन कदम है और उसके बाद ही इसको पूरी तरह से सक्सेसफुल बोला जाएगा। लेकिन आज का जो काम है ये आसान नहीं था क्योंकि इसमें एक ग्लिच आया था और वो पूरा हो गया था।
जी, और जिस तरह से आज एक माहौल दिखा इसरो के वैज्ञानिकों के बीच में, इसरो चीफ ने भी जिस तरह से खुशी जाहिर की, कितने आशान्वित हैं वो?
अच्छे से शुरू हुआ है तो अच्छा ही चलना चाहिए, लेकिन ये रॉकेट साइंस है, इसमें कहा नहीं जा सकता कहाँ पे क्या गड़बड़ आ जाए, क्या हो जाए। तो जैसे जैसे पड़ाव पार होंगे उस तरह से खुशी जाहिर की जाएगी। लेकिन आज का जो लॉन्च था, क्योंकि इससे पहले वो अबॉर्ट हुआ था 15 जुलाई को और आज पूरा हुआ, तो ये एक बड़ी बड़ी अच्छी खबर है और बड़ी अच्छी छलांग है भारत के लिए।
जी, ये भी कहा जा रहा है सर, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि 50 साल अपोलो मिशन को पूरे हो गए, अपोलो मिशन 4 दिन में पहुंच गया था, भारत का चंद्रयान इतना वक्त ले रहा है, 6 या 7 सितंबर को वहां लैंड करेगा, इसे आप किस तरह से देखते हैं ये सवालों को?
अगर आपके पास बड़ा रॉकेट हो तो आप चांद पे जल्दी से पहुंच सकते हैं। जब छोटा रॉकेट हो और उसमें मनुष्य नहीं हो तो आपके पास टाइम होता है किस तरह से अपने मिशन को पूरा करें। और 4 टन के 3.8 टन के चंद्रयान को चांद की ओर भेजा जा रहा है। आपके पास हैवी रॉकेट होता तो आप सीधे भेज सकते थे, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है अगर सर्क्यूटस रूट से बाद में भेजा जा रहा है।
अब अगली कुछ तारीखें अहम हैं और सबसे अहम शायद 6 या 7 सितंबर की तारीख होगी।
बिल्कुल, वो सबसे अहम है क्योंकि वो भारत ने कभी किया नहीं है कि लैंडर को चांद पे भेजा जाए और रोवर को वहां पे टहलाया जाए, तो वो मुश्किल काम है। और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने हरदम कहा है कि वो भारत के लिए बहुत टेरिफाइंग मोमेंट्स होंगे, बहुत खतरनाक टाइम होगा और उम्मीद रखनी चाहिए कि सब अच्छा ही अच्छा होगा।
कहां होगा भारत इस अभियान के बाद?
देखिए, भारत जो है अगर सॉफ्ट लैंड कर पाता है तो चौथा देश बनेगा अमेरिका, रूस और चीन के बाद, जो कि चांद की सतह पे अपना झंडा पहुंचा पाए, सॉफ्ट लैंड कर पाए, तो ये एक बड़ी ऊंची और बड़ी उमदा छलांग है।
ये थे पल्लव बागला। चंद्रयान अभियान भारत और दुनिया के लिए क्यों अहम है ये बता रही है बीबीसी संवाददाता सरप्रिया सांगवान।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खास मिशन चंद्रयान 2 आज लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये पहले 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसमें एक हफ्ते की देरी हुई क्योंकि GSLV MK3 रॉकेट के इंजन में लीक हो गया था और इसकी वजह से इसे ठीक करने में एक हफ्ते का वक्त लगा, लेकिन आज ये लॉन्च हो गया है। इसमें एक खास बात क्या है? खास बात ये है कि चांद की सतह पर पहली बार भारत सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद या किसी ग्रह की सतह पर उतरे तो उसमें कोई डैमेज ना हो, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। और ये वहाँ से बहुत तरह की जानकारी भारत के वैज्ञानिकों को भेजेगा क्योंकि इसमें तीन खास उपकरण हैं। एक ऑर्बिटर है जो चांद के ऑर्बिट में रहेगा और उसके चक्कर लगाएगा। एक है लैंडर जो चांद की सतह पर उतरेगा, उसमें से एक रोवर निकलेगा जो चांद पर यहाँ वहाँ घूमेगा और चांद को एक्सप्लोर करेगा। और रोवर जानकारी देगा लैंडर को, लैंडर जानकारी देगा ऑर्बिटर को, और ये ऑर्बिटर सारी जानकारी धरती पर भेजेगा। भारत ने इस चंद्रयान में 13 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं। इसके अलावा एक नासा का इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे भारत मुफ्त में लेकर जा रहा है, और ये सभी इंस्ट्रूमेंट चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब जा रहे हैं। तो जो ज़्यादातर मिशन हुए हैं वो चांद के इक्वेटर रीजन पे हुए हैं, तो पोल के पास किसी स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग नहीं की है, तो उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से कुछ ना कुछ नया निकल सकता है। भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 भी चांद पर भेजा था और ये पहला मिशन था चांद पर भारत का। उससे दुनिया में भारत का नाम भी हुआ और दुनिया ने माना कि भारत एक सस्ता और टिकाऊ मिशन पूरा कर सकता है। अब चंद्रयान 1 से आगे का कदम है चंद्रयान 2। तो भारत के लिए मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें भारत का झंडा चांद की सतह पर जा रहा है और इसलिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। भविष्य में मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग और चांद पर व्यक्ति को भेजने की जो गुंजाइश है यहीं से पैदा होगी। ये एक अहम तकनीक है जिसमें भारत मास्टर होना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये असल में रॉकेट साइंस है कि चांद से धरती की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर की है और चांद में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वातावरण नहीं है, और इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। इससे पहले जो सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन पूरे करने की कोशिश की गई उनमें से आधे तो मिशन फेल हुए। तो ये पूरा मिशन कंप्यूटर से कंट्रोल होगा और जब लैंडर और रोवर अलग होंगे ऑर्बिटर से, वो 15 मिनट सबसे मुश्किल है। तो जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इस पे लगाए गए हैं वो जैसे ऑर्बिटर पर हाई क्वालिटी कैमरा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो चांद के वातावरण को एनालाइज करेगा, जैसे धरती पर अर्थ क्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, वैसे चांद पर मून क्वेक आते हैं तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। एक प्रोब है जो चांद की सतह पर दबाया जाएगा, उससे पता चलेगा कि चांद की सतह पर कैसा तापमान होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे चांद की मिट्टी को एनालाइज किया जाएगा।
चंद्रयान के बारे में जानकारी दे रही थी सर्वप्रिया सांगवान। अगली खबर कर्नाटक से, जहां राजनीतिक खींचतान की स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत पर बहस जारी है, लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि कुमारस्वामी सरकार का भविष्य क्या होगा। सरकार को लेकर दिन भर अटकलों का दौर जारी रहा। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
विश्वास मत आज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, हर पार्टी के सदस्य यही सवाल पूछते रह गए। इसके कई कारण थे। पहला था कि सुप्रीम कोर्ट में दो निर्दलीय विधायकों की याचिका कल के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों निर्दलीय MLA ने यह याचिका दर्ज की थी कि स्पीकर रमेश कुमार को निर्देश दिए जाएं कि आज शाम तक विश्वास मत को पारित करें। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कल आने के लिए कह दिया। इसके अलावा स्पीकर ने भागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर सारे भागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया कि वो कल 11 बजे उनसे मिलें। उसके बाद स्पीकर रमेश कुमार ने विधानसभा में कहा, कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने विशेष रूप से यह सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भागी विधायकों को विधानसभा के कार्यकलाप में भाग लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस अंतरिम निर्देश की वजह से राजनीतिक पक्ष का हक कोर्ट ने छीन लिया है। उनकी गुजारिश थी कि स्पीकर होने के नाते हम इस मामले में निर्णय दें। हमारा आदेश यह है कि राजनीतिक पार्टियों को सारा हक है उनके सदस्यों को व्हिप जारी करने के लिए। ये थे रमेश कुमार के शब्द। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया होगा कि भागी विधायकों कार्यकलाप में ना हाजिर होने के लिए, लेकिन राजनीतिक पक्ष का हक है कि वो व्हिप जारी करें। इस आदेश के बाद कानून मंत्री कृष्ण बैरागौड़ा ने कई दस्तावेजों के आधार पर कहा कि भागी विधायकों का चाल चलन देखने के बाद और उनके इस्तीफे देने से ये स्पष्ट हो गया है कि वो दल बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2016 तमिलनाडु का मामला भी उठाया और कहा, स्पीकर को ये अधिकार है कि वो या तो भागी विधायकों के इस्तीफे खारिज करें या स्वीकार करें या उनको अयोग्य भी ठहरा सके। संविधान में तीसरा डायमेंशन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वो विधायक विधानसभा के सदस्य रह सकते हैं लेकिन वो गैर हाजिर भी हो सकते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत अभिप्राय है कि जब तक आप उन पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं विश्वास मत लेना ठीक नहीं होगा। दरअसल विश्वास मत का कोई पवित्रता नहीं रहेगी। ये थे कृष्ण बैरागौड़ा के शब्द। इस बीच विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री कुमार स्वामी और उनके साथियों में कुछ तनाव दिखने को मिल रहा है। जेडीएस के नेता ने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि मुख्यमंत्री को विश्वास मत बुधवार को लेने की गुजारिश थी लेकिन स्पीकर ने सारा दिन गठबंधन के सदस्यों पर दबाव डालते गए कि आज विश्वास मत पर मतदान होना ही चाहिए। बहरहाल विधानसभा अभी भी जारी है और विश्वास मत लेने पर अभी भी सवाल लगा है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
कर्नाटक को लेकर तमाम अपडेट आप bbchindi.com पर हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने एक बयान पर विवाद होने के बाद सफाई दी है। हालांकि कई नेता उनके बयान पर अब भी सवाल उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
अपने बयान पर सफाई देते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जो बयान उन्होंने कल दिया था वो उन्होंने गुस्से में आकर दिया था और वो उनका निजी बयान था और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो एक संवैधानिक प्रमुख हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसे बयान मेरी अंदर की भावनाओं को दर्शाते हैं और जब मैं राज्यपाल नहीं रहूँगा मैं तब भी ऐसे बयान दूंगा। राज्यपाल के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इतवार को राज्यपाल ने लद्दाख में चरमपंथियों से खुलेआम अपने भाषण में अपील की थी कि उन्हें पुलिस कर्मियों या आम लोगों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें उन भ्रष्ट लोगों को मारना चाहिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य को लूटा है। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
ये लड़के जो बंदूक लिए हुए सिद्धू निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पीएसओ को मारते हैं, एसपीओ को मारते हैं, क्यों मार रहे हो इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी, इनमें से भी कोई मारा आपने अभी?
राज्यपाल के इस बयान के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यह व्यक्ति जाहिर तौर पर सांविधानिक पद पर बैठा है और चरमपंथियों को बताता है कि उन नेताओं को मारो जो भ्रष्ट हैं। किसी को गैरकानूनी रूप से मरवाने के आदेश देने से पहले शायद इस व्यक्ति को दिल्ली में अपनी छवि को देखना चाहिए जो आजकल वहां उनकी बनी हुई है। एक दूसरे ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा, मेरे इस ट्वीट को नोट करके रखा जाए। आज के बाद राज्य में अगर किसी भी मुख्यधारा के नेता या फिर रिटायर्ड या नौकरी करने वाले नौकर शाह को अगर मारा गया तो समझ लेना चाहिए कि इसके आदेश राज्य के राज्यपाल ने दिए होंगे। उमर अब्दुल्ला के तीखे ट्वीटों के बाद राज्यपाल मलिक ने बताया है कि उमर अब्दुल्ला एक सियासी बच्चा है जो हर बात पर ट्वीट करता है। इस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। वर्ष 2018 में बीजेपी और पीडीपी की सरकार उस समय गिर गई थी जब बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस लिया था। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमरीका के दौरे पर हैं। आज वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बात हो सकती है ये दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। सुनिए इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद में ये बहस गर्म है कि इमरान खान के अमरीका के दौरे से चंद दिन पहले $10 मिलियन सर की कीमत रखने वाले हाफिज सईद की गिरफ्तारी महज इत्तफाक है या फिर इस दौरे की तैयारी। यही नहीं, कुछ रोज पहले पाकिस्तान की तरफ से बूरबन के इलाके में बुलाई गई अफगान अमन कॉन्फ्रेंस को भी इसी जाविये से देखा गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि पाकिस्तान अमरीका बातचीत में टेररिज्म का खात्मा बड़ा मौजू रहेगा।
पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस तालिबान के ऊपर है और इन एलिमेंट्स के ऊपर है वो यूएस को भी पता है कि बाकी मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा है। तो यूएस को पता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों में उनके काफ़ी काम आ सकता है जब तक एटलीस्ट जब तक इस पीस प्रोसेस का रिजल्ट वो अचीव ना कर ले। पर इंडिया एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। जो कि देखना पड़ेगा, बट इट विल बी ऑन द टॉक्स। हाफिज सईद उसमें पहला था जो मुंबई टेरर अटैक्स पे वो कहते थे कि किया है, एक चैप्टर तो पाकिस्तान ने क्लोज करके जा रहे हैं वहाँ पे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये पहली मुलाकात होगी, लेकिन ये उनकी पहली बातचीत नहीं। नवंबर 2018 में ट्विटर पर दोनों लीडर्स का एक टाकरा हो चुका है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के मुल्कों पर इल्जाम लगा चुके हैं।
रीजनल सिक्योरिटी बिलाशुबा इमरान खान की वाशिंगटन यात्रा के दौरान एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगी, लेकिन वो इस मौके को अमरीकी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में कारोबार की दावत देने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे।
इमरान खान की सरकार अब सिक्योरिटी से ज्यादा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है, ताकि पाकिस्तान की जूझती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। अमरीका भी सीपैक में चाइना की भारी इन्वेस्टमेंट पर बेचैन है और कारोबारी रिश्तों को मजबूत करना चाहता है।
हम राउंड अबाउट $4 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करते हैं अमेरिका को, और हमारा अमेरिका वन ऑफ द वाइड कंट्री है जो हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, और अभी हमें अगर फ्री एक्सेस मिल जाती है और हमें कंसेशन अमेरिका से मिल जाते हैं तो ये है कि हमारे इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सकती है।
पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान नज़दीकियाँ और दूरियाँ हमेशा ही बढ़ती और घटती रही हैं, लेकिन उसामा बिन लादिन की एबटाबाद में अमरीकी फौज के एक ऑपरेशन में हलाकत और पाकिस्तान में तालिबान जंगजुओं पर अमरीका के ड्रोन हमलों के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए थे, जिनमें अब बेहतरी आई है।
We will not tolerate the violation of our sovereignty and territorial integrity by any power in the name of combating terrorism.
मुशर्रफ को आज भी अमरीका की जंग पाकिस्तान पर थोपने का जिम्मेदार करार दिया जाता है। इमरान खान इस मामले में मुशर्रफ के सबसे बड़े आलोचक रहे और एतराज करते रहे कि अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को नहीं माना। यही वजह है कि अब सबकी नजरें इमरान खान पर लगी हैं कि वो वाशिंगटन में पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह लड़ेंगे। शुमाला जाफरी, BBC न्यूज, इस्लामाबाद।
आज सोमवार है और आपको इंतजार होता है अपनी चिट्ठियों का, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। मेरे साथ हैं ज्योतिका सिंह। ज्योतिका के पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं और ईमेल्स हैं हमेशा की तरह, और मुझे लगता है कि आज वो शुरुआत करने जा रही हैं एक बार फिर रेहान फजल की विवेचना की तारीफ से।
जी, और मैं सबसे पहले ईमेल लेना चाहूंगी विकास शर्मा का। कुरुक्षेत्र से लिखते हैं कि शब्द कहाँ से लाएं, सब नाकाफी होंगे रेहान फजल के लिए। कारगिल पर उनकी विवेचना की ये दूसरी कड़ी थी। रेहान साहब के विषय और पात्र ऐसे होते हैं कि सुनने लगे तो सब ठहर सा जाता है।
ज्योतिका, मैं बिल्कुल 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अकेली चिट्ठी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक के बाद एक आप बांध रहे हैं हमारे श्रोता, उसको पढ़ दें।
अगला ईमेल है राहुल कुमार बंटी, पटना बिहार से लिखते हैं कि कारगिल पर आज हम भारतीय सैनिकों की किन्हीं और वीर गाथाओं की उम्मीद कर रहे थे, मगर रेहान साहब ने बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स की तरह पाकिस्तान के एक वीर सैनिक की दास्तां सुना दी, और यकीन जानिए उन्होंने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया।
बिल्कुल मंत्रमुग्ध तो उन्होंने किया, क्योंकि मैं भी इस विवेचना को सुन रहा था और जिस तरह से उन्होंने पूरी प्रस्तुति की, मैं भी एकदम मंत्रमुग्ध था।
अगला ईमेल है राजेंद्र भट्ट हल्द्वानी से लिखते हैं कि लगभग 38 सालों से मैं सुन रहा हूँ, कभी कभार पत्र भी लिखता हूँ। कारगिल पर रेहान जी की विवेचना का दूसरा भाग सुना, उन्होंने जो जानकारी दी वो और कहीं सुनने को मिली ही नहीं थी।
यकीनन, यकीनन।
दो किश्त से जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है, रेहान जी कुछ और कड़ियां प्रस्तुत कीजिए।
अच्छा, दिल मांगे मोर। तो रेहान साहब अभी कारगिल पर कार्यक्रम जारी रखेंगे, शायद कुछ और
जी अगला ईमेल भी
है तो अगले ईमेल में भी
बिल्कुल विवेचना की ही बात है। अखिलेश कुमार बीनू के तरफ से सादर नमस्कार। इस बार की विवेचना अगर एक पाकिस्तानी आम नागरिक या खास नागरिक के बारे में होती तो शायद मैं उतना ना ही पसंद करता, पर मैं एक सैनिक के रूप से इस विवेचना को बहुत अच्छा मानता हूँ, और मैं रेहान फजल साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो एक भारतीय सैनिक के बारे में भी इसी प्रकार की विवेचना जरूर प्रस्तुत करेंगे।
हाँ, भारतीय सैनिकों के बारे में तो लगातार रेहान फजल साहब विवेचना प्रस्तुत करते रहे हैं। अगर आपने सुना हो 1971 के युद्ध के बारे में, 1965 के युद्ध के बारे में, भारतीय सैनिकों की शौर्य की गाथाएं तो आपने सुनी ही होंगी। लेकिन हाँ, ये इसी मायने में ये विवेचना अलग थी क्योंकि इसमें एक पाकिस्तानी सैनिक की वीरगाथा थी।
अब मैं तारीफों से आलोचनाओं की तरफ बढ़ूंगी।
जिस तरह तारीफ का हमने स्वागत किया वैसे ही आलोचना का भी स्वागत है।
ये ईमेल है आशुतोष कुमार पांडे आरा बिहार से लिखते हैं। वर्षों से बीबीसी सुनने का अनुभव बता रहा है कि रेडियो पर कंटेंट की विविधता की साफ कमी देखी जा रही है। प्रसारक बिल्कुल अनमने ढंग से उथले वाक्य प्रस्तुत कर सिर्फ ड्यूटी बजा लेना चाहता है। बीबीसी स्वास्थ्य के नाम पर सेक्स की खबरें और स्त्री विमर्श के नाम पर पैडेड ब्रा पर खबरें परोसता आ रहा है।
देखिए आशुतोष कुमार पांडे हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और बहुत बेबाक ढंग से अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए इनकी आलोचना को भी हम गंभीरता से लेते हैं। आशुतोष भाई, आपका अगर ये मानना है कि रेडियो में कुछ चीज़ें उथली हो रही हैं तो हम बिल्कुल सीरियस इसको नकारेंगे नहीं। कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भी खटकती हैं और हम प्रयास करते रहते हैं कि उनको भीतरी बातचीत में, आपसी बातचीत में उनको ठीक करें, दुरुस्त करें।
अगला ईमेल है हरीश शर्मा का, जयपुर से लिखते हैं कि सुबह बीबीसी सुना, सांसद ए के राय के बारे में जाना। ऐसे लोगों के बारे में सुनकर अच्छा तो लगता है पर उनके जैसा व्यवहार ना कर पाने की ग्लानि भी होती है।
देखिए बहुत विरले लोग होते हैं जो ए के रॉय की तरह पूरी तरह जो जिन चीज़ों पे वो यकीन करते हैं उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और ये सिर्फ ए के रॉय ही नहीं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में, बहुत सारे संगठनों में इस तरह के लोग हैं, चाहे वो वामपंथी हों चाहे वो दक्षिणपंथी हों। और ऐसे ही लोगों का उदाहरण हमारे सामने रहता है ताकि हम अपने जीवन को उनकी तरह ढाल सकें। धनबाद में ए के रॉय को मानने वाले, उनकी तारीफ करने वाले और उनके समर्थकों की एक बड़ी तादाद है जिनकी बात हमने अपने कार्यक्रम में शामिल की थी। तो इसी के साथ ही मुझे लगता है कि अब समय कम है तो हम चलते चलते पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहे तो तुरंत लिखेगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और आज सबसे पहले बात करेंगे हीमा दास की। भारत की स्टार एथलीट हीमा दास का नाम इन दिनों सबकी ही जुबान पर चढ़ा हुआ है। हीमा दास ने इस महीने यूरोप में अलग अलग प्रतियोगिताओं में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। क्रिकेट जगत की तमाम दिग्गज हस्तियों ने भी हीमा को सलाम किया है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने भी ट्विटर के जरिए हीमा दास को बधाइयां दी हैं। तेंदुलकर के अलावा ऋषभ पंत, मोहम्मद कैफ और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने भी हीमा दास को बधाइयां दी हैं। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। जी साथियान और अर्चना कामत ने सिंगापुर के पेंग यूएन कोएन और गोई रुई जुआन को 3-0 से हराकर 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मिश्रित युगल और स्वर्ण पदक जीता। इस जीत से साथियान और अर्चना ने अचंता शरत कमल और श्रीजा अकुला की हार का बदला भी चुकता कर लिया है। सिंगापुर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में शरत और श्रीजा को पराजित किया था। यही नहीं, पेंग ने शरत को पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल से भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। पुरुष एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त शरत ने पहले 3 मैच पॉइंट और फिर क्वार्टर फाइनल मैच गवाया, जिससे उनकी पदक जीतने की उम्मीदें समाप्त हो गईं। पेंग ने शरत से जीत छीनकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अब जाने से पहले बात प्रो कबड्डी लीग की। पिछले सीजन की उपविजेता गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग के 7वें सीजन के अपने पहले मैच में वर्तमान चैंपियन बेंगलुरु बुल्स पर शानदार जीत दर्ज की है। गुजरात ने रविवार को एक तरफा अंदाज में बेंगलुरु बुल्स को 42-24 से करारी शिकस्त देकर लीग में अपनी शानदार विजय शुरुआत की। गुजरात ने इस जीत के साथ ही पिछले सीजन के फाइनल में बेंगलुरु से मिली हार का बदला भी ले लिया। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया। मुंबई के बांद्रा में आज दोपहर MTNL की एक 9-मंजिला इमारत में आग लगी। 100 लोग फंसे थे जिनमें से ज्यादातर को निकाला गया है। ईरान का दावा, अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करने वाले 17 जासूसों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से कुछ को मौत की सजा दी गई है। यूक्रेन में वामपंथ के खात्मे के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की पार्टी संसद में बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बनने की ओर। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।